भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यास ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण। तो प्रतिदिन की तरह भागवत कथा यहाँ पे चर्चा होता है, तो आज भी हम भागवत श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 5 श्लोक क्रमांक नंबर 38। सर्वे रूपाय हन्तव्य शम्भुजो शयनासने श्रुतलिंगधर शत्रु मुने दुष्टम इव इन्द्रियम् सर्वे रूपाय हन्तव्य शम्भुजो शयनासने श्रुतलिंगधर शत्रु मुने दुष्टम इव इन्द्रियम् सर्वे रूपाय हन्तव्य शम्भुजो शयनासने श्रुतलिंगधर शत्रु मुने दृष्टम इव इन्द्रियम्। सर्वे रूपाय हन्तव्य शम्भुज शयनासने श्रुतलिंगधर शत्रु मुनादिष्टैव इन्द्रियम् सर्वे रूपाय हन्तव्य सर्वरूपाय हन्तव्य माताजी शब्दा सर्वे सभी उपाय उपाय के द्वारा हन्तव्य मार डाला जाए संभोजो खाते शयन लेटे आसने बैठे हुए श्रुतलिंग धरह मित्र की भूमिका धारण किए हुए शत्रु दुश्मन मुने मुनियों की दृष्टम अनियंत्रित इव जैसे इंद्रियम इंद्रिया। अनुवाद। जिस प्रकार असंयमित इंद्रिया आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने बढ़ने के कार्य में लगे हुए युगियों की शत्रु होती है, उसी प्रकार यह प्रहलाद मित्र के समान प्रतीत होकर भी मेरा शत्रु है, क्योंकि इस पर मेरा बस नहीं चलता। अतएव खाते बैठे या सोते हुए सभी तरह से इस शत्रु को मार डाला जाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को मार डालने का अभियान आयोजन किया कि वह अपने पुत्र को खाते समय विष खिलाकर उसे उबलते तेल में बैठाकर या जब वह सो रहा हो तो उसे हाथी के पैर के नीचे फेंक कर मार डालेगा। इस तरह हिरण्यकश्यप ने अपने उस निर्दोष बालक को, जो अभी केवल 5 वर्ष का बालक था, मार डालने का इसीलिए निश्चय किया क्योंकि यह बालक भगवान का भक्त बन गया था, क्योंकि भक्त के प्रति ऐसे मनोवृत्ति होती है अभक्तों की। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञान जन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषित करा नवनीर दावा पीताम्बरा दरुणा बिंबफला धरुषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद्र नेतात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्रील प्रभुपाद की। तो उपस्थित स्वजन वृंद, भक्त वृंद एवं माताओं को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामत संघ तरफ से हार्दिक स्वागत है। शास्त्र में बताया गया है, मनुष्य अनेक जन्मों से सुकृति संस्कार तपस्या और जब वो पुण्य इकट्ठा करता है उस व्यक्ति को ही श्रीमद भागवत कथा का श्रवण करने के लिए शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो राधारस बिहार के प्रांगण में और भक्त लोग के छत्र छाया में श्री हरि भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज का चरित्र के बारे में कुछ गुणगान के लिए सुवर्ण सुजोग मिला है, ये मेरा अहोभाग्य है। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद महाराज का चरित्र चल रहा है। प्रहलाद महाराज का जो यश, उनका गुण और उनका जो कीर्ति है, सारे लोकपाल में तीनों लोक में गुणगान होते आ रहा है। कल हम श्रील प्रभुपाद के तिरुभाव मनाए, उनका कीर्ति भी का हम लोग को गायन किए। वास्तव में कीर्ति क्या है? सबसे बड़ा मनुष्य का सबसे बड़ा कीर्ति क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा धनवान बन जाना ये सबसे बड़ा कीर्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर बन जाना ये सबसे बड़ा कीर्ति है। कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाना ये सबसे बड़ा कीर्ति है। कोई कहता है कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाना ये सबसे बड़ा कीर्ति है। परंतु कोई अगर डॉक्टर बनता है, साइंटिस्ट बनता है या इंजीनियर बनता है, उसका 30 साल पढ़ाई में चला जाता है और बाकी कितना रहता है, 30 ही साल रहता है। पहले के लोग 100 साल जीते थे, आजकल 50-60 साल में स्वाहा हो जाते हैं। तो उसका जो कीर्ति है बाकी 30 साल तक रहता है, बाद में उसको कोई पूछता नहीं है। परंतु जो भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान का भक्ति करता है, तो उसका कीर्ति अमर हो जाता है, उसका नाम अमर हो जाता है। जैसा कि प्रभुपाद, प्रभुपाद क्या किए, प्रभुपाद भगवान का भक्ति किए और भगवान का प्रचार का प्रसारित किए है, इसलिए सारे विश्व में इसका कीर्ति का गायन होते जा रहा है। भगवान का जो भक्त होता है उनका नाम अमर हो जाता है। उदाहरण के लिए सौराष्ट्र के जो जूनागढ़ है, वहां पे जाके किस व्यक्ति को पूछेंगे जूनागढ़ किसका है, तो एक ही उत्तर मिलेगा, ये जूनागढ़ नरसिंह मेहता का है। फिर हम लोग जाएंगे पोरबंदर में, पोरबंदर किसका है, ना महात्मा सुदामा का था। राजस्थान मारवाड़ी किसका है, राजस्थान में खड़ा होकर पूछेंगे मारवाड़ किसका है, तो एक ही उत्तर मिलेगा कि ये मीराबाई का था। यद्यपि कितने बड़े बड़े राजा महात्मा सब लोग को चला गए हैं, परंतु उनका नाम आज का शास्त्र के पन्ने पर लिखा हुआ है, उनका नाम अमर है, तो उसको कहते कीर्ति है। हा? तो सबसे बड़ा कीर्ति यह है, मस्तक में तिलक धारण करना, गले में कंठीमाल धारण करना, हाथ में ज्वालामाला लेके भगवान का नाम जप करना, यह सबसे बड़ा कीर्ति है। उससे बढ़कर कोई कीर्ति नहीं है। देखिए प्रभुपाद, प्रभुपाद सारे विश्व में प्रचार किए हैं। आजकल देखिए जितने भी जो लोग हैं, जो देश प्रेमी है, समाज का सेवा करते हैं, राष्ट्र का सेवा करते हैं, हाँ, उन लोग का सर्कल में, चौक में पुतला बनाया जाता है। पुतला बनाया जाता है, साल में एक ही बार उनको साफ सफाई करके पूजा किया जाता है और बाकी साल भर उसका अपना कौवा टट्टी करता है। परंतु हमारा प्रभुपाद देखिए, कृष्ण का भक्त बने और प्रचार किए, उनके लिए मंदिर बनाया गया, उनका रोज ड्रेसिंग होता है, रोज पूजा आरती किया जाता है, रोज गुणगान किया जाता है, ये भक्त का कीर्ति है। तो हम लोग तो कल प्रभुपाद के कीर्ति के बारे में सुना है, आज आइए इस प्रहलाद महाराज का कीर्ति क्या है इसका बारे में चर्चा करेंगे। भागवत जो सप्तम स्कंद है बहुत अच्छा है। एक्चुअली देखा जाए संपूर्ण भागवत निगम कल्पतर गलितम फलम संपूर्ण बहुत अच्छा है, फिर भी बड़े बड़े संत महात्मा रसिक जन ये भागवत के जो सप्तम स्कंद का ज्यादा रसास्वादन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध भक्त है, भगवान नारायण के शुद्ध भक्त है और द्वादश महाजन में एक महाजन है। यदि भी 5 साल का बालक है, हा? फिर भी उसको महात्मा कहते हैं। और हम लोग को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, गुरु शिष्य गुरु का गुणगान करते हैं। यहाँ पे गुरुदेव शिष्य का गुणगान कर रहे हैं। नारद मुनि प्रहलाद महाराज का गुरु थे और राज यज्ञ में लाखों हजार राजा महात्मा संत महात्मा बैठे हैं, उस स्थान में नारद मुनि अपना शिष्य का गुणगान कर रहे हैं, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं है। तो ये भागवत जो है, हाँ, एक्चुअली भागवत क्या है, हाँ, सब लोग कहते हैं भागवत सर्वश्रेष्ठ है, भागवत अच्छा है, भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत क्या है, हाँ, और 12 स्कंद में सूद गोस्वामी बता दिया क्या है, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युत यथा वैष्णव नाम यथा शंभु पुराण नाम इदम तथा। कहते हैं कि जितना भी गंगा है, जितना भी ये नदी है, सबसे श्रेष्ठ है गंगा नदी है। जितना भी देवता, 33 करोड़ देवता है, उसमें से श्रेष्ठ है अच्युत भगवान विष्णु है। जितना भी संसार में वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु शिव शंकर श्रेष्ठ है। और जितने भी शास्त्र पुराण है, सबसे श्रेष्ठ है भागवत पुराण। तो भागवत है क्या? भागवत 4 अक्षर का है, भा ग ब त। भाव में क्या मिलता है? भाव भक्ति। ग में ज्ञान, किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार का भाव होना चाहिए, वो भागवत में है। भाव में भा में भाव भक्ति मिलता है, ग में ज्ञान मिलता है और ब में वैराग्य। भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा वैराग्य, वैराग्य का अर्थ है त्याग। जब तक व्यक्ति त्याग नहीं करता है उसको भगवान कभी नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो भाव में वैराग्य और त में तपस्या है। तपस्या किस प्रकार करना चाहिए, या हिमालय में जाके पद्मासन लगा के ध्यान लगाना चाहिए कि मंदिर में रहना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, किस प्रकार का तपस्या करना चाहिए, भागवत में वर्णन है। यद्यपि भागवत में 10 विषय वस्तु है, स्वर्ग विसर्ग स्थान पोषण होती मनमंत्र ईशान कथा निरत मुक्ति आश्रय हो, ये विषय वस्तु है, परंतु भागवत का अंदर जाने से पहले भागवत क्या है जान लेना चाहिए। तो भागवत का अंदर आइए, उस प्रहलाद महाराज कैसा क्या कैसे उपदेश दिए पिताजी को, असुर बालक को कैसा उपदेश दिए, उनका पाठ करेंगे। और हर मनुष्य के पास चार दोष रहता है, उस दोष में से एक है त्रुटि करना, तो उसमें भी मेरा कुछ त्रुटि हो सकता है, इसलिए मैं आपका चरण में क्षमा चाहती हूँ। एक्चुअली ये जो भागवत का जो प्रहलाद महाराज का चरित्र है, चतुर कुमार सनक आदि और जय विजय से शुरू होता है, परंतु उसका आगे मैं नहीं जाऊंगा, बहुत टाइम हो जाएगा, मैं बीच में से शुरू करता हूँ। बीच में से हिरण्याक्ष का वध से शुरू करता हूँ। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया भगवान वराह के द्वारा, तो हिरण्यकश्यप बड़े थे, उनका अनुज पत्नी ऋषाभानु और उनके जो भतीजे थे उनको विभिन्न प्रकार का ज्ञान उपदेश दिए, आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान दिए, बाद में उनका अंत्येष्टि क्रिया, उनका अग्निदाह संस्कार करवाए, बाद में बहुत क्रोधित हुए, बहुत लाल आंख करके क्रोध में बैठे, उनका जो होठ है फड़फड़ने लगा, क्यों मेरा भाई को भगवान विष्णु क्यों मारा, उसका मैं प्रतिशोध लूंगा, ऐसा सोच रहा था। तो भगवान जो विष्णु है ये बहुत बड़े शक्तिशाली है, उनको अगर मारना है तो मुझे भी शक्ति चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये शक्ति कैसा मिलेगा। तो ऐसा बैठे बैठे हिरण्यकश्यप का मन में पांच चीज प्राप्त करने का इच्छा हुआ, पांच चीज प्राप्त करने का इच्छा हुआ। वो तो पांच चीज क्या है, नारद मुनि परीक्षित, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बताते हैं कि हे राजन, हिरण्यकश्यप का मन में ये पांच चीज इच्छा हुआ, क्या है, हिरण्यकश्यप राजन अजयम अजरम मरम आत्मनाम प्रतिद्वंदम एक राजम व्यदित सतः। यदि हे राजन, हिरण्यकश्यप का मन में ये पांच चीज प्राप्त करने का इच्छा हुआ, क्या क्या है, अजय, वो किसी का साथ परास्त नहीं होना चाहता था, सबका साथ जीतना चाहता था, और अजर, अजर का अर्थ है बुढ़ापा, वो कभी नहीं चाहता था मैं बुढ़ापा हूं, और है अमर, वो अमर बनना चाहता था, और चार नंबर अप्रतिद्वंदम, आत्मा नाम अप्रतिद्वंदम, प्रतिद्वंद का अर्थ है विरोधी, उसका साथ कोई विरोधी करने वाला ना हो, इच्छा। पांच नंबर इच्छा था, पांच चीज इच्छा, उसका एक राजम व्यधित सतह, पूरा भूमंडल में सम्राट एक ही राजा छत्रपति होना चाहता था, ये पांच चीज प्राप्त करने का उनका मन में इच्छा हुआ, इच्छा हुआ। फिर वो गुरु का पास गया, गुरु कौन थे, शुक्राचार्य, शुक्राचार्य थे, देखिए राक्षस है फिर भी उनका कितना स्वभाव अच्छा है। हा? गुरु का पास गए, कोई व्यक्ति अगर कुछ महान कार्य करना चाहता है सबसे पहले उनको गुरु का पास जाना चाहिए, जैसा कि भगवान राम हो, दशरथ महाराज हो, कुछ भी अगर बड़ा कार्य करते थे वशिष्ठ मुनि के पास जाते थे, उनसे परामर्श लेकर ही राज्य कारोबार संभालते थे। तो गुरु का पास गया, परंतु गुरु जो थे शुक्राचार्य, वो अलग प्रकार का गुरु थे ना, जैसा गुरु को ऐसा चला नरक में होता है ठेला पेला, ऐसा ही गुरु थे। गुरु से जाके बोला कि हे गुरुदेव, मुझे पांच चीज चाहिए, कैसा मिलेगा, तो शुक्राचार्य बोले कि शिष्य मिल जाएगा, तुम ब्रह्मा जी का तपस्या करो। हा? क्या क्या चाहिए ना, अजय अजर अमरम अप्रतिद्वंदम एक राजम, ये पांच ही चाहिए ना, मिल जाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी का पास जाना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी का तपस्या करने के लिए, देखिए गुरु जो है, अगर गुरु एक शब्द, शुक्राचार्य एक शब्द बोल देते कि नहीं बेटा, ये जो भगवान विष्णु के साथ बैर रखना चाहते हो, जिसका साथ तुम चुनौती दे रहे हो, साधारण पुरुष नहीं है,
महान शक्तिशाली है। तुम्हारा जो भाई था अनुज हिरण्याक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा शक्तिशाली था, फिर भी भगवान एक झटका ने उनको मार दिया। इसलिए बेटा उनसे बैर मत रखो, उनका शरणागत हो जाओ। केवल एक ही शब्द बोल देते थे, हाँ हिरण्यकश्यप महाजन का लिस्ट में नाम आ जाता था। हाँ जैसा कि उनका पुत्र का नाम महाजन में आ गया, उनका पौत्र का नाम बलिमार का महाजन में आ गया, केवल थोड़ा सा बात गुरु अगर कह देते थे ये मान लेता था ना, तो ये प्रहलाद महाराज को कष्ट देता था ना हिरण्यकश्यप जाके मंद्रासल पर्वत में तपस्या करता था। केवल गुरु ऐसा बोल दिया इसलिए जाके तपस्या करने लगा। गुरु जो है तो सब लोग गुरु नहीं हो सकते है। ये रूप गोस्वामी के अनुसार उपदेशामृत में बताया गया है कि जो छह बेग को कंट्रोल करता है वो गुरु हो सकता है। वाचो बेगम, मनुष्य क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदर उपस्थ बेगम, ये छह बेग है। और श्रीधर गोस्वामी, श्रीधर स्वामी के अनुसार छह योग्यता होना चाहिए। श्रीधर स्वामी कहते हैं जो कोई अगर गुरु बनना चाहता है उसका पास छह योग्यता होना चाहिए। छह योग्यता क्या है? सबसे पहला योग्यता कहते हैं कि कृष्ण का भक्त होना चाहिए। कृष्ण का भक्त, ऐसा नहीं कि शिव का, काली का, दुर्गा का, किसी का भी भक्त बन जाए, कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। दूसरा योग्यता यह है कि गुरु परंपरा, सांप्रदायिक गुरु परंपरा में होना चाहिए। परंतु आज हम में तो पूरा भारत जाता हूं, पुस्तक वितरण के लिए गाड़ी लेके जाता हूं, देखता हूं कि ये जो चार संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय ऑलरेडी बंद हो चुका है और श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के जो लोग है केवल दक्षिण भारत में ही प्रचार करते हैं, सारे विश्व में नहीं है। और रुद्र संप्रदाय जो है वहां का जो संत महात्मा भद्रानंद बन गए हैं, खाते पीते हैं, चिलम दम लगाते हैं, बैठते बस प्रचार कार्य का नहीं, कोई नरक जाए या स्वर्ग जाए कोई लेना देना नहीं उनको, भद्रानंद बन गए है। हा? और बाकी रहा ब्रह्मवादी और गौड़ी संप्रदाय जो हम लोग है, यही सारे विश्व में ठीक ठीक से प्रचार कर रहा है। तो दूसरा नंबर योग्यता है गुरु परंपरा होना चाहिए। तीन नंबर योग्यता है गुरुदेव जो कुछ प्रवचन में कहते हैं शास्त्र में प्रमाण होना चाहिए, शास्त्र में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहां से भी बक दिया, नहीं। कोई पूछेगा महाराज आप कहां से बताया, तो अगर शास्त्र से बताया होगा, बताया कि सप्तम स्कंद पंचम अध्याय 38 नंबर श्लोक में ये भगवान बताया, हाँ कोई बता सकता है? अगर मन का मनगढ़ तो बताता है तो क्या बताएगा वो। तो तीसरी नंबर योग्यता है शास्त्र के अंदर प्रमाण होना चाहिए। चौथा नंबर योग्यता है गुरुदेव जो कहते हैं स्वयं आचरण करना चाहिए, प्रैक्टिकल शरीर में उतरना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिष्य लोग को बड़ा बड़ा बात बताएगा और स्वयं आचरण नहीं करता है। एक कथा मुझे याद आती है, एक जगह पे बहुत बड़ा कथा का आयोजन हुआ और लाखों संख्या में श्रोता लोग आए थे और वहां पे प्रवक्ता कथा कर रहा है और कथा का टॉपिक क्या था, कांदा लहसुन का ऊपर है। बहुत लोग बैठे हैं, कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्पश्चात् मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यां गुणगतिष्ठा मद गच्छन्ति तामसा। कहते कि जो कांदा लहसुन काटता है रजोगुण बढ़ता है, इसमें भगवान का भक्ति करने में रुचि नहीं होता है, इसलिए कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सारे भीड़ हुए थे, बहुत लोग आए थे। हाँ बाद में उनका जो घर का पड़ोसी वाला जो पत्नी है वो भी कथा सुनने के लिए गया था। बाद में वो पत्नी, वो जो प्रवक्ता का पत्नी को आके बताया, उसका प्रवक्ता का पत्नी का नाम सुकांति था, बताया कि अरे तुम्हारा पति तो भी इतना सुंदर कथा करते हैं, लोग देश विदेश से आते सुनते हैं, तुम क्यों नहीं जाते हो? तो बोले कि क्या करूं बहन जी, मेरा घर का बहुत काम धंधा रहता है और मैं बच्चे को नहलाना धुलाना स्कूल भेजना विभिन्न प्रकार का काम रहता है, मैं कैसा जा सकता हूँ। तो पड़ोसी वाला माताजी बोला कि ठीक है सुकांति, कल तुम 4 बजे उठ जाओ, जल्दी घर का काम समाप्त करो, दोनों मिलकर कथा सुनने के लिए जाते हैं, कितना सुंदर तुम्हारा पति देव कथा करते हैं। तो दोनों मिलकर गए तो कांदा लहसुन का ऊपर भी बताया कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो ये जो सुकांति माताजी प्रवक्ता का पत्नी, ये राइस दाल बना के गया था, सब्जी नहीं बनाया था। उन्होंने कहा कि हमारे श्रीमान जी आएंगे अभी प्रसाद पाने के लिए आएंगे, मैं तो राइस दाल बनाया, भाजी नहीं बनाया, मैं भाजी बना लूंगा, मैं जल्दी जाता हूँ। वो आगे ही बिना कांदा लहसुन का भाजी बनाया। तो प्रवक्ता घर में आया, बोला सुकांत आज बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। तो खाना लगाया, जैसा ही मुंह में लिया फूक दिया, थूक दिया। तो वह आदमी बोला कि अच्छा ये खाना कुछ अलग अलग क्यों लग रहा है सुकांति? तो उनका पत्नी कहा कि पतिदेव आज मेरा आप आंख खोल दिया है। क्या आंख खोल दिया? बंद था? नहीं, मैं कथा सुनने के लिए गई थी आपके
प्रवचन सुनने के लिए गए थे ना, कभी तुम कभी गया ना, सुबह गया था ना, गया था तो क्या हुआ, ये ऐसा क्यों लग रहा है ना, मैं बिना कांदा लहसुन का सब्जी बनाया ना, क्यों ना, आपने तो कहा कि कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, रजोगुण बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है, हाँ इसलिए नहीं बनाया, इसलिए हम लोग को सतोगुण का सब्जी खाएंगे, अच्छी तरह से भोजन करेंगे, भगवान के पास जाएंगे। तो प्रवक्ता ने बहुत गुस्सा हो गया और उन्होंने कहा कि अरे तुम चौकी का बात चूल्हा में क्यों लाया, चौकी का बात चूल्हा में क्यों लाया, वो जो प्रवचन है वो लोग के लिए है, ये हमारे लिए थोड़ी है। हाँ एक काम करना सुकांत जी, कल से कांदा लहसुन डाल के डबल तड़का लगाए, कल से मेरे लिए बनाना, ऐसा प्रवक्ता रहते हैं। तो चार नंबर योग्यता ये है कि गुरुदेव जो कुछ कहता है शरीर में आचरण करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आचरण नहीं करता है बाहर कुछ भी बोलता है, ये नहीं चलेगा। हाँ पांच नंबर योग्यता है, गुरुदेव कितना भी बड़ा प्रवक्ता हो जाए, लाखों संख्या में शिष्य बना दे, अपने आपको कभी भगवान घोषित नहीं करना चाहिए। हाँ कभी भगवान घोषित नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद को लंदन में जो भी प्रवचन कर रहे थे, किसी व्यक्ति ने पूछा अच्छा प्रभुपाद आप भगवान है, तो प्रभुपाद मना कर दिया, नहीं मैं भगवान नहीं है। तो फिर से पूछा वो आदमी क्या आप भक्त है, तो प्रभुपाद मना किया, नहीं मैं भक्त नहीं है। हाँ देखिए, जिस व्यक्ति ने 10,000 लेक्चर दिया है, जिस व्यक्ति ने 10,000 शिष्य बनाया है, जिस व्यक्ति ने 14-12 सारे विश्व को परिक्रमा किया है, जिस व्यक्ति ने कम से कम 18 पुस्तक लिखा है, जिस व्यक्ति ने 108 मंदिर बनाया है, ऐसे व्यक्ति कहते हैं नहीं मैं भक्त नहीं, भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं। परंतु हम लोग को थोड़ा सा कंठी माला पहन लेते हैं, कहते हम भक्त बन गए। देखिए, तो गुरुदेव जो पांचवा नंबर योग्यता है, कितना भी बड़ा प्रवक्ता हो जाए अपने आपको कोई भगवान घोषित नहीं करना चाहिए। और छह नंबर योग्यता ये है कि इंद्रिय का संयम होना चाहिए, इंद्रिय का संयम होना चाहिए, जितेंद्र बनना चाहिए तभी वो गुरु हो सकता है। ये शुक्राचार्य इसमें से नहीं थे, इसीलिए उनको भेजे जाके जाए तपस्या करो। और ये जो कुछ लोग जो देवताओं का उपासना करते हैं, भगवद गीता में भगवान कहते हैं अल्प बुद्धि के लोग जो है देवी देवता का उपासना करते हैं, अल्प बुद्धि के लोग है। फिर गुरुदेव का आदेश पाकर मंद्रासल पर्वत में गया। अल्प बुद्धि के लोग कौन होते हैं, जो आश्चर्य प्रभाव वाले हैं, वो देवी देवता का उपासना करते हैं। यहां पे जाके तपस्या किया, कैसा तपस्या किया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सतपे मंदर द्रोण्यम तप परम दारुणम ऊर्ध्व बाहु नव दृष्टि पादंगुष्टाश्रित बनी। कहते कि हे राजन, हिरण का शुभ ऐसा उग्र तपस्या किया, ऐसा दारुण तपस्या किया, आज तक ऐसा कोई किया नहीं है। कैसा तपस्या है, ऊर्ध्व बाहु हाथ ऊपर किया, नव दृष्टि ऊपर की ओर देखते रहा, और पाद अंगुष्ठा आश्रित बनी, अंगूठे के बल पर खड़ा रहा। और कितना वर्ष तपस्या किया है, 36,500 वर्ष तपस्या किया है, देवताओं के दैवी 100 वर्ष तपस्या किया। हा? ये से लोग भगवान का पास न जाकर देवी देवता का पास जाते हैं। तो ये हिरण्यकश्यप इतना बड़ा तपस्या किया है, परंतु ब्रह्मा आके उनको प्रसन्न नहीं है, उनको वर दिए है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। और देवता लोग जो देते हैं कुछ कम ही देते, ज्यादा नहीं देते हैं, इतना कठोर तपस्या किया कम ही दिए ब्रह्मा जी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नारायण का कोई व्यक्ति भक्ति करता है उनको ज्यादा देते हैं। कहते हैं ना भगवान जो देते हैं जिसको छप्पर फाड़ के देते हैं। उदाहरण के लिए रावण, रावण जो है अपना 10 मस्त का काट कर यज्ञ कुंड में डाला, तब भी भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको सोने का लंका दिए। और उनका भाई विभीषण, वो कोई तपस्या नहीं किए, भगवान राम का चरण में जाकर केवल एक प्रणाम किए तो भगवान श्री राम बोल दिए उठो लंकेश, लंका का राजा बना दिए प्रणाम करते ही। हाँ उठो लंकेश बोल दिए, तो वहां पे जांबवान खड़ा थे, बोले कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, रावण अभी तक मरा नहीं है, उनका लंका का राजा बना दिए। हाँ तो बोला कि अभी मेरा मुख से निकल गया तो मैं तो बनाऊंगा ही, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुख से निकल गया और भगवान राम जांबवान को बोले,
रावण को अगर मैं जीत नहीं पाया, लंका नहीं ले पाया, तो मैं मेरा अयोध्या दे दूंगा मैं। बता दे, ये भगवान का भक्ति। हा? और भगवान जब जो देवी देवता कुछ देते हैं, ये भक्त लोग को देवी देवता का भक्त संतुष्ट नहीं होते हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे आगे प्रसंग आएगा, हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी तीनों लोक का राजा बना दिया, फिर भी संतुष्ट नहीं हो, फिर भी संतुष्ट नहीं है। परंतु भागवत में देखते ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज केवल 6 महीना तपस्या किया, यद्यपि कुछ मांगने के लिए गए थे, और जैसे ही भगवान विष्णु को दर्शन किया, हाँ उनका मांगना सब कैंसिल हो गया। और भगवान ने बताया कि मांगो बेटा, कुछ मांगो, ध्रुव कुछ मुझे मांगो। तो प्रहलाद महाराज बताए, ध्रुव महाराज बताए कि हे प्रभु, मैं तो कांच का टुकड़ा के लिए आया था, आपका दर्शन मिल गया, इसमें मैं बहुत संतुष्ट हूं। ध्रुव महाराज संतुष्ट हो गए। रामायण में कथा आता है केवट का, जब राम लक्ष्मण सीता को नदी पार किया, तो भगवान श्री राम अंगूठा निकाल कर केवट को दिए, तो केवट मना किए, बोले कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका सेवा किया, आपका दर्शन किया, उसमें मैं संतुष्ट हूं। भगवान का भक्त संतुष्ट हो जाता है, यहाँ पे इतना बड़ा कठोर तपस्या करने के बाद भी देवी देवता का भक्त संतुष्ट नहीं होते हैं। और जब देवी देवता का आगे बात है, देवी देवता का जो भक्त करते हैं, कुछ मंत्र तंत्र साधना करते हैं, उसमें से कुछ गड़बड़ हो जाता है, भूल हो जाता है, तो देवी देवता लड़ते हैं। जो गांव में रहा हुआ वो व्यक्ति समझ सकता है, देवी देवता लोग को परेशान करते घर में, लड़ते है, इसलिए बकरा बलि देते है सब। गांव में एक व्यक्ति दुर्गा देवी का भक्त था, वो दुर्गा माता का मंदिर में हमेशा जाता था, तो शादी किया, विवाह करने के बाद पत्नी को मंदिर में लेके गया प्रार्थना कराने के लिए, उनका लंबी आयु के लिए। तो उनको संस्कृत में बोला भार्या भक्षति भेरी, केवल एक ही शब्द भूल हो गया, भार्या रक्षति भेरी बोलना चाहिए था, भार्या भक्षति भेरी ऐसा बोला। घर में गया, घर में जाते ही उसका पत्नी मर गया। बाद में फिर दूसरा विवाह किया, दूसरा विवाह किया, बाद में फिर माता जी के पास लेके गया वो पत्नी को, कहा कि भार्या भक्ष्यति भेरी, वो घर भी नहीं गया, गाड़ी पे ही मर गया वो पत्नी। फिर तीसरा विवाह किया, तीसरा जो विवाह किया जो पत्नी था थोड़ा संस्कृत जानती थी, तो फिर उसे भी प्रार्थना करता था, भार्या भाव बोलते ही उसका पत्नी उसका मुख में हाथ डाल दिया, और पत्नी कहा अरे पतिदेव आप क्या है, पहला दिन में आप हमको मारना चाहते हो। बोला नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा लंबी आयु के लिए देवी से प्रार्थना करना चाहता हूँ। बोले अरे लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे हो क्या, मार रहे हो मुझे। बोला नहीं नहीं, तुम्हारा लंबी उम्र के लिए। बोला नहीं, मुझे अगर मेरा लंबी उम्र के लिए अगर प्रार्थना करना चाहते हो तो भार्या भक्ष्यति भेरी नहीं बोलना चाहिए, भार्या रक्षति भेरी बोलो। तभी उसको पता चला अरे यार मेरे एक ही शब्द भूल हो गया, इसलिए मेरा दो पत्नी का मुंह हो गया। तो देवी देवता का एक ही शब्द अगर भूल हो जाता है वो लड़ते रहते हैं। परंतु यहां पे देखिए रामायण में डाकू रत्नाकर, डाकू रत्नाकर इतना पापी था, नारद जब उनको मिले भगवान का नाम जप करने के लिए बोले, बोले तुम महापापी बन गया है, ये पाप से अगर मुक्त होना है तुमको भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। और बड़ा मंत्र भी नहीं दिया है, नारद मुनि बोले कि दो अक्षर का मंत्र जप करो, क्या है राम बोलो। तो पापी लोग का मुख में हरि नाम का उच्चारण नहीं होता है। देवोति माता तृतीय स्कंध में वर्णन करते हैं, कपिल देव कहते हैं कि हे प्रभु, जिसका मुख में जो हरिनाम उच्चारण होता है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सारे नदी में गंगा जमुना नर्मदा सिंधु कावेरी अलकनंदा चंद्रभागा सारे नदी में स्नान किया होगा तभी तो उसका मुख में हरिनाम उच्चारण होता है। उतना ही नहीं, वो व्यक्ति ने सारे तीर्थ जगह पे भ्रमण किया होगा इसलिए उसका मुख में हरिनाम उच्चारण होता है। और इतना ही नहीं, जितना भी वेद शास्त्र वेदांत सूत्र वो अध्ययन किया होगा इसलिए उसका मुख में हरिनाम का उच्चारण होता है। ये जो डाकू रत्नाकर ये बहुत बड़ा पापी था, पापी लोग का मुख में हरिनाम उच्चारण नहीं होता है। वो जिस व्यक्ति को देखता था ये मरा वो मरा बोलता था, ये खरगोश मरा वो हाथी मरा वो हरिण मरा, सो मरा मरा ही बोलता था, उसका अभ्यास हो गया था। परंतु राम शब्द नहीं बोल पाया, परंतु उल्टा नाम जप किया फिर भी उनको फायदा हुआ। बीज कैसे भी बोलो या टेढ़ा बोलो सीधा बोलो एड़ा पे किछ भी बोलो, उनका पौधा सीधा ही होता है। हम लोग खेती में जो बीज डालते हैं क्या सीधा डालते हैं? नहीं, कुछ भी कैसे भी डाल देते हैं लेकिन उसका पौधा सीधा ही हो जाता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का, भगवान का, राम का, किसी तरह भी नाम जप करो, खाईते पीते सोईते उनका फल सीधा ही मिलने वाला है। सीधा ही मिलने वाला है। और देखिए एक बात है, जब भी देवी देवता का भक्ति करते हैं और अंत समय में कुछ अगर संकट आया, देवी देवता रक्षा करने के लिए नहीं आते है। ये बात ये है, जितना कठोर तपस्या किए, देखिए उधर आगे प्रसंग आएगा, ये हिरण्यकशिपु 36,500 वर्ष तपस्या किया, जब भी नरसिंह भगवान उसका पेट को फाड़ दिए, ब्रह्मा जी देखने तक नहीं आए, आए क्या? नहीं आए। कंस ने दुर्गा देवी का भक्त था, जब रंग मंच पर भगवान श्री कृष्ण छलांग लगाया, उनका चोटी पकड़कर दे दना दन मारते रहे, हाँ, फिर भी वो देवी देखने के लिए नहीं आया। भगवान राम रावण का एक एक मस्त काटते रहे, काटे जा रहे, परंतु शिव जी का भक्त था, शिव जी देखने के लिए नहीं आए। हाँ, और एक बार शिव जी देखने के लिए आए थे, किसके पास? बाणासुर के पास, जो हजारों हाथ था उनका, शिव जी का सामने एक एक हाथ काट दिए भगवान, परंतु शिव चुप रह गए। हाँ, इतना तपस्या करने के बाद संकट आने पर भी देवता लोग को नहीं आते बचाने के लिए, देखने तक भी नहीं आते हैं, परंतु हम उदाहरण देखते हैं अजामिल। अजामिल वो भक्त भी नहीं था, पापी था, केवल नामावास कर दिया, थोड़ा सा नारायण पुकार दिया तो भगवान का चार चार दूत आ गए रक्षा करने के लिए। ये भगवान का भक्ति और देवता का भक्ति होता है। हाँ, तो भक्ति किसका करना चाहिए? तो आप लोग को मालूम, हमको भी मालूम है कैसा करना चाहिए। जो अल्प बुद्धि के लोग हैं, ये देवी देवता का शरण में जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग को बहुत बड़े सौभाग्य जो कि भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ गए हैं, और बाकी लोग अलग अलग देवी देवता के शरण में जाते हैं, और जो देवता लोग को देते हैं ये भगवान श्री कृष्ण से ही लेकर देते हैं, पूरा नहीं देते है, उनसे लेकर देते है। तो उसे अच्छा जो पूरा देते है, जो सक्सेस करते है, उनका पास डायरेक्ट क्यों नहीं जाते है? क्योंकि सब लोग को नहीं जाते है, जो अनादिकाल का जो पूर्वजन का सुकृति जिसका इकट्ठा होता है, पुण्य इकट्ठा होता है, उस व्यक्ति ही भगवान का शरण में जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर उनको वर दिए। वो तो हम जानते हैं कैसा वर मांगा, ना तो दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। हाँ, तपस्या की, उससे पर इतना तपस्या किया, उनका मस्तक से इतना आग निकला, इतना अग्नि प्रज्वलित हुआ, सारे तीनों लोक में पूरा फैल गया। जितना भी देवता लोग विमान में आकाश में भ्रमण कर रहे थे वो लोग तप गए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए। हाँ, ब्रह्मा जी से बोले कि त्राही मंत्राय में हम लोग को रक्षा करो, ये हिरण्यकश्यप तपस्या कर हमको तपा रहे है, परंतु ब्रह्मा जी ध्यान नहीं दिए। तो देवता लोग बोले, अरे हम लोग इतना प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी क्यों ध्यान नहीं देते हैं? फिर देवता लोग बोले, अच्छा हे सृष्टिकर्ता दिव्य विधाता ब्रह्मा, ये जो हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है आपका कुर्सी के लिए तपस्या कर रहा है, आपका ब्रह्म लोग को प्राप्ति करने के लिए तपस्या कर रहा है। तभी ब्रह्मा जी हड़बड़ा गए, क्योंकि सब लोग को सीट का प्रति आसक्ति है, कुर्सी का प्रति आसक्ति है। तो अच्छा ऐसा कर रहे हैं, तो चलो कुछ करते हैं। हाँ, फिर भृगु दक्ष और अलग अलग ऋषि इत्यादि को लेके आए, हंस का ऊपर आरूढ़ होकर, देखे कि कहाँ पे मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर जो है चिंटी खा लिया था, उनका जो मांस चर्बी रक्त सब चिंटी खा लिया था, केवल हड्डी में प्राण था। कहा जाता कि सत्य युग में हड्डी में प्राण रहता है और कलि युग में अर्ण में प्राण रहता है। हाँ, उसका हड्डी में प्राण था। ब्रह्मा जी देखा, हाँ, और कमंडल से पानी छिड़का तो उनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, सुंदर बन गया, बहुत शक्तिशाली बन गया। पहला जैसा शरीर था उसे हजार गुना बलवान बन गया। फिर जैसे ही ब्रह्मा जी का दर्शन किया, हाँ, सुखद गोस्वामी कहते हैं जो हिरण्यकश्यप डायरेक्ट साक्षात दंडवत प्रणाम करवाया, प्रणाम किया। बाद में वर मांगने के लिए कहा तो बोला कि मुझे अमर वर चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि मेरा पास तो अमर वर नहीं है, तुमको कैसा दे सकता हूँ? तो विभिन्न प्रकार का वर मांगा। जब ये वर मांगा तो सब वर प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा चले गए। बाद में तीनों लोग को तपाने लगा, सारे संत महात्मा को तपाने लगा, कष्ट दिया, सबको सताया। सबसे पहले तो इंद्र का सीट का ऊपर जाके बैठ गया, और इंद्र चरण वर्ण इंद्र चंद्र कुबेर वर्ण जितना भी है सबका बाद झाड़ू दे दिया पोछा मारने के लिए, कपड़ा दे दिया पोछा मारने के लिए। इसी तरह बहुत समय तक राज करते रहा, सबको परेशान करते रहा। तो सब लोग परेशान करते करते पूरा थक गए, सब लोग जितना भी देवता लोग थक गए। तो युधिष्ठिर महाराज परीक्षित नारद मुनि को पूछते हैं कि मैं सुना उनका कोई एक छोटा बच्चा था ना, उनका चार पुत्र था, प्रहलाद, अल्लाद, अनुलाद, सल्लाद। उसमें से चार पुत्र में श्रेष्ठ था प्रहलाद। सर्वगुण संपन्न था, बौद्धशील था, गुणवान था, सब कुछ था, फिर भी उनका जो पिता है उनका मारने का प्रयास किया, जान से मारने का प्रयास किया। तो युधिष्ठिर महाराज पूछे नारद मुनि से, बोले कि भला ऐसा कौन ऐसा पिता है अपने पुत्र को मार सकता है, चाहे लंगड़ा हो, गुंगा हो, कि बहरा हो, कि अंधा हो, कोई पिता अपने पुत्र को नहीं मारता है। फिर भी ये जो है प्रहलाद है, साधु पुत्र था, गुणवान था, उसको मारने का प्रयास, इतना पूरा जान से मारने का क्यों प्रयास किया, उसका मुझे विस्तार से सुनाए। तो नारद मुनि बताया कि ये जो प्रहलाद है विष्णु का भक्त बन गया था, हमेशा विष्णु का भक्त करता, भक्ति करता था, इसीलिए ये क्रोधित होता था। प्रहलाद महाराज गुरुकुल में कुछ बाद में, कुछ दिन के बाद बड़े हुए, पांच साल का बाद जब गुरुकुल में भेजा गया तो गुरुकुल में सुंदर भाव से पढ़ाई करते थे। हिरण्यकश्यप का एक गुरुकुल था, वो बहुत बड़ा बोर्ड लगाया था, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, आज का संसार में ऐसा ही गुरुकुल दिखता है। मैं एक बार पुस्तक वितरण के लिए गया था, एक जगह पे रविन्द्रनाथ पाटिल गुरुकुल लिखा है। मैं बोला कि वहां का लाइब्रेरी में पुस्तक नहीं रहा होगा, मैं जाके उधर पुस्तक दूंगा। तो वहां का सिक्योरिटी मुझे वहां पे लेके गया, जो रविन्द्रनाथ पाटिल है, तो उनका ऑफिस में जो भी गया है वो सिगरेट फूक रहा है। और मैं बोला आपका गुरुकुल में भगवद गीता चाहिए लाइब्रेरी के लिए? बोला हाँ चाहिए। मतलब नहीं है ना, नहीं है भगवद गीता, नहीं है गुरुकुल ये बनाया है वो। तो वहां पे भगवद गीता दिया। तो हिरण्यकश्यप का एक गुरुकुल था, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, वहां पे तीन चीज पढ़ा जाता था, तीन विषयों का ऊपर पढ़ाया जाता था, जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष है। ये मोक्ष छोड़कर धर्म अर्थ काम ये तीन ही सिखाया जाता था। क्यों मोक्ष क्यों नहीं दिया जाता था, मोक्ष के बारे में क्यों सिखाया नहीं जाता था? तो सब लोग बोलते थे हमारा जो भगवान हिरण्यकश्यप हमको मोक्ष देगा, इसीलिए मोक्ष के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, केवल धर्म अर्थ और काम के बारे में ही शिक्षा दिया जाता था। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रहलाद सुंदर चरित्र था, सर्वगुण संपन्न था, शील था, किसका निंदा नहीं करते थे, किसका ईर्ष्या नहीं करते थे, जो कुछ मिलता था उसमें संतुष्ट रहते थे, जो कुछ मिल जाता था उसमें आनंद रहते थे, भगवान का भजन कीर्तन करते थे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे मुरली मनोहर कृष्ण मेरो है, ऐसा भजन कीर्तन करते थे। कभी रोते थे, कभी कभी हंसते थे, कभी कभी स्मरण करते थे, भगवान का प्रार्थना करते हैं। जैसा कि भागवत में षष्ठ स्कंद में कथा आती है, भूत्रासुर, भूत्रासुर भी इंद्र के साथ रणभूमि में प्रार्थना सुंदर करती है। क्या है? नौ नाक प्रेष्णम न च परमेष्णम न सर्वभौमो न रस्याधिपत्यम। कहते कि हे प्रभु, मुझे ध्रुव लोक जैसा लोक नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी के जैसे बड़े पद नहीं चाहिए, मैं संसार का अधिपति नहीं चाहता हूँ, मैं तो केवल आपका सेवा करना चाहता हूँ। हे प्रभु, कभी आपका चरण का दास बनाएंगे, ऐसा सुंदर प्रार्थना करते थे। कौन? भूत्रासुर। ये भी प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के भक्ति करते थे, परंतु उनका पिताजी बहुत सताते थे, फिर भी वो भगवान का कीर्तन भजन कीर्तन करते थे। जब भी टाइम मिल जाता था, हे युधिष्ठिर महाराज, नारद जी कहते हे युधिष्ठिर, जब भी समय मिल जाता था उनका जो छात्र लोग सहपाठी लोग बुलाते थे खेलने के लिए, परंतु खेलने के लिए नहीं जाते थे, भगवान का भजन कीर्तन करते थे। ऐसे व्यक्ति उनका जो गुरु थे संत अमरक थे, उनको अलग अलग विभिन्न प्रकार का ज्ञान देते थे, और पूछते थे तो ज्ञान सुनते थे और उनको बता भी देते थे, ऐसा थे। कुछ दिन का बाद संडामर का उनका घर में लेके आए, कयाधु माता उनको स्नान आदि कराया, सुंदर आभूषण और ड्रेस पहनाया, बाद में उनका पिताजी का पास लेके गए। पिताजी हिरण्यकश्यप राज सिंहासन में आरूढ़ है, जैसे ही पुत्र को देखा उसको गोद में उठा लिया, उनका सिर सूंघा और कहा हे प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। और प्रहलाद तुम अभी तक जो कुछ पढ़ा है, तुम जो कुछ अच्छा लगा कुछ मुझे बताओ ना। तो प्रहलाद बोले कि मुझे एक ही चीज अच्छा लगा, क्या है वो बताओ। कहते कि तद साधु मन्ने असुर वार देहे नाम सदा समुद्गीन धियम साद्गहात हित्वात पातम गृहंधकूपम बनोगत यद हरिमाश्रयत। कहते कि हे असुरराज, अपना पिताजी को कोई पिताजी नहीं बोला है, क्योंकि वो पिता नहीं था। पिता वो होता है जो भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन कराता है। ये ऋषभ देव जी कहते हैं गुरु ना शिष्या, स्वजन ना शिष्या, पिता ना शिष्या, जननी ना शिष्या। गुरु गुरु नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है जो अपने भक्त को शिष्य को कृष्ण का मार्गदर्शन नहीं कराता है। इसीलिए पिता होकर भी कभी पिता नहीं बोला, बोलते हे असुरराज तत्साद मन असुर बर दे नाम, हे असुरराज मुझे एक ही चीज अच्छा लगा है, हाँ जो एक गृहस्थी जंजाल में एक गृह में भी होकर हाँ जंजाल में फंस कर रहना अच्छा है, वन में चला जाना चाहिए। वन में जाकर क्या करना चाहिए ना, हरि में आश्रित है हम, भगवान हरि का आश्रित करना चाहिए, आश्रित हो जाना चाहिए और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। एक गृह अंधकूप में छोड़ो और जंगल में जाओ। जैसे ही बोला ऐसा तो हिरण्यकश्यप आंख लाल लाल हो गया और तुरंत बुलाया सांड अमर, ये क्या कह रहा तुम्हारा बाप, हाँ तुम लोग क्या सिखाए, तुम लोग यहाँ पे रहते हैं और गुणगान उनका करवाते हैं, तुम लोग क्या सिखाया, हाँ ये मेरा शत्रु विष्णु का जो मेरा शत्रु है उनका गुणगान कर रहा है, क्या सिखाए उनको ध्यान दो। तो सौंडा अमर को बोला कि हम लोग को महाराज, हम लोग तो इसको ज्ञान नहीं दिया है, कहां से सीखा हमको पता नहीं है। मतलब उसको उसका दिमाग ठीक कर ला के फिर उनको गुरुकुल लेके गए। फिर सौंडा अमर कने शांति से पूछे कि अरे प्रहलाद, हम लोग तो तुम्हें ये ज्ञान नहीं सिखाया है, तुम ये ज्ञान कहां से सिखा है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो अंतर्जामी है, जो कण कण में रहते हैं, सबका हृदय में रहते हैं, जो परम ब्रह्म नारायण है, जो सबको संत महात्मा को ज्ञान देते हैं, वो मुझे ज्ञान देते हैं, ना हमारे पास क्यों नहीं आता है ना तुम्हारा पास, तुम्हारा जो ज्ञान ढंका हुआ है, भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो शांत से जब समझाए तो नहीं समझे तो बोले कि अरे मेरा छड़ी लेके आओ, साम दाम भेद दंड। ये प्रहलाद छोटा सा बालक है, हमारे गुरु का आदेश पालन नहीं करता है, ठीक ठीक से बताता नहीं है, उनको पिटाई करना चाहिए। तो प्रहलाद सुंदर उपदेश देते हैं, अरे तुम किसका पिटाई करना चाहते हैं, जिसको पिटाई करना चाहते मैं वो ही नहीं, मैं तो शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूं। तो अमरक ने कहा कि अरे सांड ये तो छोटा बालक है, नादान है, हाँ उसका दिमाग कुछ कतरा घुस गया है, हाँ उसको ठीक से हम पढ़ाते हैं, बाद में लेके जाते हैं, हाँ हमारे जो पिताजी आएंगे शुक्राचार्य उनको ठीक कर देंगे। तो कुछ दिन के बाद फिर उनको पढ़ाई चालू कर दिए, फिर एक महीना के बाद फिर लेके गए, कोयद माता ने उनको फिर स्नान करवाया, आभूषण पहनाया। तो फिर प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने गोद में लिया, फिर से पूछा बेटा तुम्हारा कल्याण हो, और क्या पढ़ा है, तुमको कौन सा चीज अच्छा लगा है, मुझे तो शब्द सुनाओ। बच्चे लोग का जो तोतली मुख से बड़े लोग को सुनना बहुत अच्छा लगता है, ये तो आखिर उसका पिता ही था। तो बोला कि मुझे बहुत एक चीज अच्छा लगा, तो क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मा निवेदनम। कहा कि हे असुराज, भगवान श्री कृष्ण का बारे में श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ये जो नौ प्रकार का भक्ति है, नौ विधा भक्ति है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हा? तो ऐसा कहते ही हिरण्यकश्यप उनको डांटा नहीं, डायरेक्ट फेंक दिया गोद से फेंक दिया, और उनका जो जितने भी सेना लोग है सबका आदेश दिया उनको मारो, उनका मुख नहीं देखना चाहता हूं। तो हिरण्यकश्यप बोला अरे तेरा पास एक ज्ञान कैसा आता है। संड अमर को बुलाया, संड अमर को बोले कि अरे महाराज हम लोग को तो ज्ञान उनको नहीं दिया है, ये जन्म जाता है, ये जन्म जाता सिखा है, हम लोग को कुछ नहीं सिखाया है ना। तो हिरण्यकश्यप कहा कि तुम ये ज्ञान कहां से प्राप्त किया है, हमारे पास क्यों ज्ञान नहीं आता है, ये जो ज्ञान तुम बोल रहा है मेरा शत्रु है, उनका भक्ति ना करके मेरा भक्ति करना चाहिए, इसलिए तुम हरि नाम छोड़ दो, मेरा नाम जप करो। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो प्रहलाद महाराज कहा कि मेरे को खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा कर दो, परंतु मैं हरि नाम नहीं छोड़ सकता हूं, हमेशा नारायण नारायण जप करते थे। बाद में उनका सेना को आदेश दिए, बोले कि अरे यह हमारा चंदन का बगीचा में ये बबुल का कांटा कैसा जन्म हो गया है, पैदा जन्म हो गया है, उनको मारो। किसी तरह खाते आज का श्लोक में सर्व रूपाय हंतव्य संभोज जसासने, कहते कि उसको किस तरह खाईते पीते सोते बैठे हुए मार डालो, कि हाथी का नीचे कुचल डालो, कुछ भी करो उसको मार दो, उनका मुंह मुख देखना नहीं चाहिए, कुल अंगार है, हमारा सामने रहता है, हमारा मित्र जैसा लगता है, मित्र जैसा लगता है, परंतु शत्रु है, ये कुल अंगार है, उसको मार डालो। विभिन्न प्रकार का मारने का प्रयास किए उनको, जैसे ही बोले वो आदेश दे। बाद में ये हिरण्यकशिपु पूछते हैं, अरे प्रहलाद ये जो विभिन्न प्रकार का ज्ञान तेरा पास आया कैसे है, पूछते है। बोलते कि आपका पास भी आ सकता है परंतु पुनः पुनः चर्बित श्रवण नाम, आप चौबाया चीज को चबाते इसलिए आपका पास ज्ञान नहीं आता है। हा? बिना महत्पाद रज अभिषेकम, जब तक कोई गुरु का शुद्ध भक्त का चरण रज मस्तक धारण नहीं करता है तब तक को भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। और ये श्लोक भी रहुगण को राजा भरत जी कहते, जड़ भरत जी कौन सा
रहु गणे तपसा नयाति न चे जया निर्वपणा गृहाद न छंदस नै बजलाग्नि सूरे बिना महत्पाद रज अभिषेकम।
जड़ भरत जी रहुगण कहते कि हे राजा, कोई व्यक्ति अगर घर त्याग कर दे तो उसको भगवान नहीं मिलने वाला है। हाँ? कोई अग्नि का अंदर प्रवेश करके तपस्या करता है उसको भगवान नहीं मिलने वाला है। कोई पानी का अंदर जाकर तपस्या करता है उसको भगवान नहीं मिला है। कितना भी वेद शास्त्र पढ़ने से भगवान नहीं मिला है। जब तक गुरु संत महात्मा का बिना महत्पाद रज अभिषेकम, जब तक संत महात्मा का वैराग्य व्यक्ति त्यागी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त का चरण रज जब तक मस्तक में धारण नहीं करता है तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हे असुरराज, तुम भगवान का भक्त का चरण रज मस्तक में धारण करो। हाँ, चबाए अच्छी चीज को चबाओ मत, भगवान का भक्ति करो, तुम्हारे पास स्वतः ज्ञान आ जाएगा। हाँ? तो विभिन्न प्रकार का कष्ट दिए, ये तो हम जानते हैं, कैसा पहाड़ का ऊपर फेंका, हाथी का नीचे कुचल डाला, सांप का दंशन करवाया, विभिन्न प्रकार का कष्ट दिए। बोले कि बाद में ठीक है, ये बच्चा है हमारा कलेजी का टुकड़ा है, उनको थोड़ा और समझाओ। फिर गुरुकुल में लेके गए, गुरुकुल में भी भक्त लोग को प्रचार कर दिए, जो प्रचारक है जो घोषणा दिए ठीक से नहीं रहेगा, वो कहां पे भी जाएगा तो भगवान का प्रचार ही करेगा। वो बच्चे लोग जो उनका सहपाठी असुर बालक है उनको भी प्रचार किए, और उनको कौन सा प्रचार किए, धर्म अर्थ काम तो तीन शिक्षा दिए थे लिए थे परंतु उनको चार शिक्षा दे रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बोले कि ये भी प्राप्त करने का जरूरत नहीं है, प्रयास करने का जरूरत नहीं है, ये स्वतः हमारा प्रकृति का नियम है, ये स्वतः हमको मिलने वाला है, इसके लिए प्रयास करना जरूरत नहीं है, हमको तो प्रयास करना पड़ेगा भगवान का भक्ति के लिए। हा? और षष्ठ स्कंध में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भी कहते हैं, जब ये परीक्षित महाराज को 28 प्रकार का नरक का बारे में वर्णन किए, तामिश्र अंधतामिश्र रौरव अहय पान विभिन्न प्रकार कुंभिपाक अलग अलग नरक का बारे में वर्णन किए, परीक्षित महाराज का हाथ पैर से कंप गया, थरने लगा। और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी प्रश्न पूछा कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप ये सब विभिन्न प्रकार का पाप करने से नरक में जाने के लिए बताया है, परंतु नरक में से लोग कैसा बचेंगे, लोग नरक में कैसा नहीं जाएंगे, इसका बारे में कुछ उपाय है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्राश्चित कर लेना चाहिए। क्या प्राश्चित? तपसा ब्रह्मचारेण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्यम यमेन नियमेन वा। ये विभिन्न प्रकार प्राश्चित के लिए तपस्या करना पड़ेगा, ब्रह्मचारी व्रत पालन करना पड़ेगा, यम नियम पालन करना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, शौचाभ्यम पवित्र रहना पड़ेगा, तभी तो प्राश्चित होगा। तो परीक्षित महाराज बोले कि अरे प्राश्चित करेगा फिर पाप करेगा, प्राश्चित करेगा पाप करेगा, ये तो मेरे को हाथी स्नान जैसा लगता है। जैसा कि जंगल में आग लग जाता है, आग जब लग जाता है पूरा वृक्ष बड़े बड़े विशाल वृक्ष जलकर राख हो जाता है, परंतु मिट्टी का अंदर जो उसका जड़ रह जाता है, जो मूल रह जाता है, वो जलता नहीं है। जब भी बरसात का सीजन आता है उसका ऊपर जब भी पानी गिरता है फिर से अंकुर उगता है, फिर विराट वृक्ष विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी तरह संसार के लोग प्राश्चित करेंगे पाप करेंगे, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा, हे सुखदेव गोस्वामी ऐसा कुछ सुंदर उपाय बताओ ताकि मूल भी जल जाए और पेड़ भी जल जाए। तो सुखदेव गोस्वामी उनको सुंदर उपदेश देते हैं, क्या है? कैश्चित कैवल्या भक्त्या वासुदेव परायणम अगम धुन्मंतिका स्नेन निहारम इव भास्कर। कहते कैश्चित कैवल्या भक्त्या, जैसा प्रहलाद महाराज असुर बालक कहते हैं कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करो, नारायण का भक्ति करो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कैश्चित कैवल्या भक्त्या, केवल कृष्ण का भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है। कैश्चित कैवल्या भक्त वासुदेव परायण, वासुदेव श्री कृष्ण का परायण हो जाओ, करने से क्या होगा? अगम धुनमंती, जैसा कोई व्यक्ति, जैसा कि ठंडी सीजन में बहुत सुबह सुबह कोहरा रहता है, क्या कोहरा कहते ना उसको, कोहरा रहता है तो रास्ता में दिखता नहीं है ना? कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरा पास ऐसा शक्ति है, मेरा पास इतना आग है, मैं उसको आग जला कर कोहरा को भगा सकता हूं, क्या संभव है? नहीं है। कोई कहेगा मेरे पास ऐसा राइफल पिस्तौल है, पिस्तौल के द्वारा कोहरा को भगा सकता हूं, क्या संभव है? नहीं है। असंभव कभी है? न्यारमेव भास्करम, जब तक सूर्य प्रकट नहीं होता है तब तक कोहरा भागता नहीं है। इसी तरह हे परीक्षित, जैसा सूर्य आने से कोहरा भाग जाता है, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करने से सारे गुण सारे सब कुछ मिल जाता है, सब प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तुम भक्ति करो। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बता रहे हैं, यहाँ पे प्रहलाद महाराज असुर बालक को बता रहे हैं। तो उसका आगे भी इस प्रसंग बहुत लंबा है, तो समय तो कम है, लेकिन बोलेंगे सब आगे जाएंगे फिर लेट हो जाएगा, इसलिए अपने बाणों को इतने बोल के विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। इसका कुछ जिज्ञासा है, प्रश्न है? ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रमानंदे। हरे कृष्ण।